आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय कार्य और ऊर्जा। ये कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का 9वां अध्याय है। बच्चों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमने पिछली क्लास में जो जो बातें पढ़ी थी पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि ऊर्जा के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हमने संक्षिप्त में बहुत कम कम थोड़ा थोड़ा ही हमने अलग अलग ऊर्जाओं के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बताया था। यांत्रिक ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको उसके बाद भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा है वो किसी भी वस्तु में अगर गति मौजूद है तो उसकी वजह से जो उसमें ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में तब आती है जब उसका स्थान बदला जाता है, यानी कि उसकी स्थिति बदली जाती है या फिर उसकी आकृति या मतलब कि उसका शेप बदला जाता है। तो उसकी वजह से जो उसमें ऊर्जा पैदा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? आपको देखने को मिल सकती है जल, पवन, गाड़ी, गेंद, इन सभी चीज़ों में अगर गति मौजूद है तो उसकी वजह से उसमें गतिज ऊर्जा पैदा होती है। और स्थितिज ऊर्जा पैदा होती है स्प्रिंग में अगर हम उसकी आकृति बदल दें तो, या फिर गुलेल की आकृति बदलने से, तीर कमान की आकृति बदलने से उसमें स्थितिज ऊर्जा पैदा होती है। उसके बाद हमने बात की थी ऊष्मा ऊर्जा के बारे में। मैंने आपको बताया था ऊष्मा का मतलब होता है गर्माहट, गर्मी। तो जो ऊष्मा की वजह से, गर्मी की वजह से जो ऊर्जा पैदा होती है उसी को ऊष्मा ऊर्जा कहा जाता है। जब कोई भी वस्तु जलती है तो उसकी वजह से उसमें गर्माहट पैदा होती है और उसी के वजह से उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को ऊष्मा ऊर्जा कहा जाता है। और आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें जलती हैं, जो ईंधन होता है उसी को हम जलाते हैं, जैसे कि कोयला या फिर पेट्रोल या डीजल। जब हम इन्हें जलाते हैं तो इनकी गर्माहट की वजह से जो ऊर्जा पैदा होती है उसी को ऊष्मा ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक ऊर्जा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वस्तु में रासायनिक क्रिया हो रही हो तो उसकी वजह से उसमें जो ऊर्जा पैदा होती है उसी को रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि जब ईंधन जलता है तो उसकी वजह से उसमें कुछ ऊर्जा पैदा होती है। आपको पता है कि किसी भी ईंधन का जलना क्या होता है, एक रासायनिक क्रिया होती है। तो जब रासायनिक क्रिया हो रही है उसकी वजह से उसमें जो ऊर्जा है उसी रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोगों ने सेल देखा होगा, जो आप टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रासायनिक क्रिया हो रही होती है। इसी की वजह से जो उसमें ऊर्जा होती है वही रासायनिक ऊर्जा होती है और वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, बिजली में बदल जाती है और उसी की वजह से आप अपने टॉर्च को इस्तेमाल कर पाते हो, उसे जला पाते हो। मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताया था कि आप कैसे कह सकते हो कि आपके सेल में रासायनिक क्रिया चल रही है। अगर आपके सेल में रासायनिक क्रिया नहीं चल रही होती तो आपका सेल खराब हो गया होता, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, उससे आप टॉर्च नहीं जला पाते। तो अगर आप टॉर्च का इस्तेमाल कर पा रहे हो सेल उसमें लगा करके, तो इसका मतलब ये है कि आपके सेल में रासायनिक क्रिया चल रही है जिसकी वजह से उसमें रासायनिक ऊर्जा मौजूद है। उसके बाद मैंने आपको रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण बताए थे कि जितने भी प्रकार के ईंधन होते हैं उन सभी के सभी में रासायनिक ऊर्जा मौजूद होती है। उसके बाद हमने बात की थी प्रकाश ऊर्जा की। आप लोगों को पता है कि सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बल्ब है, विद्युत बल्ब, उससे भी हमें प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि इस प्रकाश की वजह से जो ऊर्जा पैदा होती है उसी को प्रकाश ऊर्जा कहा जाता है। जो सूर्य में होती है और जो बल्ब होता है उसकी रोशनी की वजह से भी कुछ ऊर्जा पैदा होती है उसी को प्रकाश ऊर्जा कहा जा सकता है। आप लोगों ने इसके उदाहरण के रूप में ये पढ़ा था कि धूप में आप लोग देखते हो कि चीज़ें गर्म हो जाती हैं, तो वो गर्म इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि प्रकाश से जो ऊर्जा पैदा होती है वो चीज़ों को गर्म कर देती है। और इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं सौर सेल में विद्युत बनाने के लिए। उसके बाद आगे हमने बात की थी विद्युत ऊर्जा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं जिसमें हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो पंखा होता है, चाहे बल्ब होता है, चाहे जो मोटर होता है, इन सभी को चलाने के लिए हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली का इस्तेमाल करके हम इन सब चीजों को चला इसीलिए पाते हैं क्योंकि बिजली में कुछ ऊर्जा मौजूद होती है जिसको विद्युत ऊर्जा कहा जाता है, जो बिजली के प्रवाह की वजह से, बिजली जब आ रही होती है हमारे उपकरणों में उसकी वजह से उसमें कुछ ऊर्जा पैदा होती है, उसी को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। और इसी विद्युत ऊर्जा के पैदा होने की वजह से हम अपने उपकरणों को इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी चुंबकीय ऊर्जा के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग अगर किसी चीज़ को, लोहे की चीज को चुंबक के पास में लाओगे तो वो लोहे की चीज चुंबक की ओर आकर्षित होने लगती है, चुंबक उसको अपनी ओर खींचने लगता है। तो आप वहां पर क्या देखते हो कि चुंबक को उस लोहे की चीज के पास लाने की वजह से जो लोहे की चीज है वो विस्थापित हो गई, उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन हो गया। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि चुंबक ने उस लोहे की चीज पर बल लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी चीज पर बल भी लग रहा है और उसकी वजह से उसमें कुछ विस्थापन हो रहा है, मतलब उस पर कुछ कार्य हो रहा है। कार्य तभी हो सकता है अगर कहीं से उस पर कुछ ऊर्जा लगाई जा रही हो। तो जो ऊर्जा उस पर लग रही है वो चुंबक के द्वारा लग रही है और ऐसी ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि चुंबकीय ऊर्जा आपको कहाँ पर देखने को मिल सकती है, चुंबक के आसपास आपको उसके क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा की प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी महसूस हो सकती है। और इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, जो क्रेन होती है चुंबकीय, उसमें उपकरण लगे होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लोहे की भारी भारी चीज़ों को उठा लेते हैं। तो कहा जा सकता है कि चुंबक से हम लोहे की चीज़ों को उठाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे हमने बात की थी ध्वनि ऊर्जा के बारे में। तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी वस्तु में अगर ध्वनि प्रोड्यूस हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो, तो उसकी वजह से उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। ध्वनि जब उत्पन्न होती है किसी चीज़ से तो आप देखते हो कि उसमें कंपन हो रहा होता है। तो वो कंपन इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऊर्जा पैदा हो रही है जिससे वो अपने आसपास की चीज़ों को कंपित कर रही है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी चीज़ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा मौजूद है जिसे ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। और ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, जो अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं उसमें आप देख पाते हो कि जब उसमें ध्वनि प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, तो उसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, उसी को ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद आगे हमने बात की थी परमाणु ऊर्जा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी नाभिकों का विखंडन होता है या फिर उनका संलयन होता है तो उससे कुछ ऊर्जा पैदा होती है, उसी को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। नाभिक मतलब कि क्या होता है, इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और ये होता क्या है, ये एटम का जो, यानी अणु का भी छोटा हिस्सा जो होता है उसी को परमाणु या फिर नाभिक कहते हैं। तो जब भी कभी किसी नाभिक का या फिर परमाणु का विखंडन, मतलब वो जब वो टूटता है या फिर अगर वो दो नाभिक जुड़ जाते हैं, दो परमाणु जुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें कुछ ऊर्जा पैदा होती है, उसी को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। और इसको आप कहाँ पर देख सकते हो, आप इसको परमाणु भट्टी में देख सकते हो। ये जगह है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है और इसकी वजह से क्या करते हैं, परमाणु भट्टी में जब परमाणु ऊर्जा बना देते हैं तो उसको उसके बाद विद्युत निर्माण में, मतलब उससे बिजली बनाई जाती है, तो इसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे हमने बात की थी ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में। मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि ऊर्जा जो होती है वो कभी भी ना पैदा की जा सकती है ना उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब कि मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि आप लोग जो खाना खाते हो उसमें वो खाना कैसे खाते हो, फल खाते हो आप पेड़ से निकाल करके, तोड़ करके, तो वो फल कौन तैयार करता है, पौधे तैयार करते हैं। और वो कैसे तैयार करते हैं, वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और उसी के इस्तेमाल से वो अपने फल को तैयार करते हैं। और आप जब उन फलों को खा लेते हो तो वो ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है, आपको ऊर्जा मिल जाती है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप अलग अलग काम कर पाते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सौर ऊर्जा जो है वो अलग रूप में बदल गई और उसके रूप को बदल करके वो आपके शरीर में, जैसे ही आपने उसको खाया तो आपके शरीर में वो ऊर्जा आ गई जिससे आपने जैसे ही कुछ अलग कार्य किया तो वो फिर अपना रूप बदल देती है। तो यहाँ आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा बदलती रहती है, लेकिन वो कभी भी ना नष्ट हो सकती है ना वो पैदा की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट देखा था, इस चार्ट में हमने देखा था कि ऊर्जा का कैसे रूपांतरण हो रहा है। पेज नंबर 102, चित्र 9.4, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो बांध का पानी होता है वो ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसके बाद वो प्रवाहित होता है। तो जब वो ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी वजह से उसकी स्थिति बदल जाती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पैदा हो जाती है। और जैसे ही वो प्रवाहित होता है, मतलब उसमें गति आ जाती है, तो उसकी वजह से उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। मतलब कि जो बांध का पानी था जब वो ऊंचाई से गिरा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तब बदल जाएगी जब वो प्रवाहित होने लगेगा, बहने लगेगा। और उसके बाद क्या करता है, वो टर्बाइन से टकराता है, और टर्बाइन से टकराने के बाद वो विद्युत ऊर्जा में उसको बदल दिया जाता है गतिज ऊर्जा को। तो जैसे ही वो टर्बाइन से टकराता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक जनरेटर लगाया होता है, उसके घूमने की वजह से, टर्बाइन के घूमने की वजह से क्या होता है, जनरेटर में बिजली पैदा होती है, और उसके बाद उस बिजली को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे विद्युत घंटी में, विद्युत मोटर में, पानी की टंकी में पानी चढ़ाने के लिए, या फिर बैटरी चार्ज करने के लिए, पंखा चलाने के लिए, जो विद्युत रेल होते हैं उसको चलाने के लिए, कारखानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे विद्युत चुंबक में इस्तेमाल किया जा सकता है, विद्युत हीटर में इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर विद्युत बल्ब में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आखिर में हमने बात की थी गतिविधि 5 के बारे में। ये कहाँ पर है, पेज नंबर 103 पर है। इसमें हमने आपको बताया था कि अलग अलग आपको साधनों के नाम बताए गए हैं, और आपको इसमें ये बताना है कि उस साधन में सबसे पहले कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद उस ऊर्जा को किस रूप में बदला गया है। तो सबसे पहले हमने बल्ब के बारे में बात की थी, ट्यूबलाइट में क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत हीटर में फिर से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं, सोलर सेल में क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत सेल में क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, माइक्रोफोन में क्या करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं, लाउडस्पीकर में भी यही करते हैं। उसके बाद हमने टर्बाइन के बारे में बात की थी, इसमें क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। उसके बाद 4 जो आखिरी के थे वो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो मैं अब आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ, आप चेक कर लेना कि आपने ठीक किया है कि नहीं। डीजल इंजन, इसमें क्या करते हैं, इसमें इंजन को चलाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसमें डीजल इस्तेमाल किया जाता है, और उसको जलाया जाता है, और उससे क्या पैदा होती है, ऊष्मा ऊर्जा, और उस ऊष्मा ऊर्जा को किस में बदला जाता है, इस ऊष्मा ऊर्जा को बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि जैसे ही गाड़ी चलने लगेगी तो उसमें गति आ जाएगी, और उसकी वजह से उसमें यांत्रिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा पैदा हो जाएगी। उसके बाद अगला है नाभिकीय भट्टी, तो नाभिकीय भट्टी में क्या करते हैं कि जो परमाणु ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसको बदला किस में जाता है, विद्युत ऊर्जा में उसको बदला जाता है, विद्युत यानी कि बिजली तैयार की जाती है वहां पर। और उसके बाद पवन चक्की, पवन चक्की में क्या करते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है या फिर जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसकी वजह से क्या करते हैं, विद्युत तैयार करते हैं, बिजली तैयार करते हैं, जब बहुत तेज गति की पवन चलती है तो उसकी वजह से पवन चक्की घूमने लगती है, और उसके घूमने की वजह से विद्युत यानी कि बिजली तैयार होती है, और उसी को इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग कामों में। उसके बाद डायनामो या फिर विद्युत जनित्र, इसमें क्या करते हैं, इसको जनरेटर बोलते हैं, आप लोगों को पता है जनरेटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जनरेटर में क्या करते हैं, पहले तो अलग अलग चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो बांध होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, जैसे टर्बाइन घूमने लगता है तो उसके बाद उसके घूमने की वजह से उसमें जनरेटर लगा दिया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे टर्बाइन घूमने लगता है तो जनरेटर में वो बिजली के रूप में बदल जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो जनरेटर का इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये तो हमने बच्चों बात कर ली कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अब हम आज की विषय को शुरू करते हैं। आज का पहला विषय है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। तो आप लोगों को पता है कि बच्चों जब आप अपने आसपास की चीज़ें रोज़ रोज़ जो काम करते हो उसमें आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, अलग अलग ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करते हो। कैसे इस्तेमाल करते हो, जैसे आप खाना पकाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हो, लकड़ी का, केरोसिन का, ईंधन का, या फिर गोबर गैस का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। गाड़ी चलाने के लिए डीजल का या पेट्रोल का या सीएनजी का इस्तेमाल करते हो। बिजली का इस्तेमाल करने के लिए आप लोग गतिज ऊर्जा का या कोयले की ऊष्मा ऊर्जा का या पवन ऊर्जा का, इन सब चीज़ों से जब बिजली तैयार की जाती है तो आप बिजली का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आप एक ही दिन में हर रोज़ अलग अलग चीज़ों को जैसे जैसे इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर आप ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, अब ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो देखो बच्चों, परंपरागत का क्या मतलब होता है, परंपरागत का मतलब ये होता है कि हमेशा से ये काम किया जा रहा हो, बहुत पुराने ज़माने से ही जिन ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक किया चला जा रहा है, तो उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर हमको पढ़ना है। जैसे रसोई गैस जो होती है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, खनिज कोयला, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल को कहा जाता है, इनको परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और इन सभी चीज़ों को हम कैसे प्राप्त करते हैं, इनको हम हमारी धरती के गर्भ से मतलब धरती के अंदर से निकाल करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये बनते कैसे, आप लोगों ने पढ़ा है कि जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं, कि जब सबसे पहले बहुत सालों पहले क्या हुआ था, धरती के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे जीव जंतु थे, लेकिन क्या हुआ कि धरती के भूगर्भ में, धरती के भीतर कुछ हलचल हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी ऊपर के जीव जंतु और पेड़ पौधे थे वो सभी के सभी भूमि के अंदर, धरती के अंदर वो दब गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे वो धरती के अंदर दब गए तो उसकी वजह से अंदर दाब मतलब कि प्रेशर, उनके ऊपर दबाव बढ़ने लग गया। जैसे उनके ऊपर मिट्टी और चढ़ती जाएगी तो दबाव बढ़ने लग गया, और जैसे ही वो और अंदर चले गए धरती के तो ताप भी बढ़ने लग गया। ताप क्यों बढ़ने लग गया, क्योंकि देखो धरती के अंदर वाले हिस्से में, बहुत अंदर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, तो जैसे जैसे ये जीव जंतु और पेड़ पौधे और भी अंदर जाते गए धरती के अंदर, तो इनके ऊपर दाब और इनके ऊपर ताप, इनके ऊपर गर्माहट, इनके ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से बहुत बहुत समय बाद ये सभी की सभी चीज़ें, जो पेड़ पौधे थे और जो जीव जंतु थे जो धरती के अंदर दब गए, वो बदल गए खनिज में, पेट्रोलियम में, जिसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, प्राकृतिक गैस, खनिज कोयला, इन सब चीज़ों के रूप में। और इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों की जो रासायनिक ऊर्जा होती है, इन पर रासायनिक क्रिया करते हैं, इनको हम जलाते हैं तो जलाना एक रासायनिक क्रिया होती है, जैसे ही हम इन पर रासायनिक क्रिया करते हैं तो इनमें कुछ रासायनिक ऊर्जा पैदा होती है, उसी को हम ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं, और उसके बाद अलग अलग चीज़ों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाना पकाने के लिए आप लोग लकड़ी आदि का भी इस्तेमाल करते हो, तो जो लकड़ी होती है उसको भी आप परंपरागत ऊर्जा स्रोत में डाल सकते हो। और बहुत ज़्यादा लकड़ी के इस्तेमाल से आपको पता है जंगल से लकड़ियाँ ली जाती हैं, तो जंगल से लकड़ियाँ लेने की वजह से जंगल की लकड़ियों में भी कमी आ रही है और पेड़ भी बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। तो देखो जो चीज़ें हम लोग धरती के अंदर से निकाल रहे हैं, उसको खनन करके, धरती का खनन करके और उसमें से निकालते हैं, तो उन सभी ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहा जा रहा है। यहाँ पर कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है, रसोई गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, प्राकृतिक गैस है, खनिज कोयला है, इन सभी चीज़ों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जो लकड़ी होती है उसको काष्ठ ईंधन कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन और काष्ठ ईंधन को मिला करके हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब देखो क्या हो रहा है धीरे धीरे करके कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इस्तेमाल बढ़ रहा है किसका, जो ये जीवाश्म ईंधन है इन सब चीज़ों का, या फिर जो काष्ट ईंधन है इनका। तो जब इन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको पता है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद नहीं है, वो धरती के अंदर में बहुत लिमिटेड, बहुत कम मौजूद है, और अगर हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा ईंधन ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचो अगर कोई समय ऐसा आए कि आपके पास बिल्कुल ही कोई पेट्रोल ना हो, कोई रसोई गैस ना हो, कोई डीजल ना हो, तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक संकट की घड़ी आ जाएगी अगर हमारे सारे के सारे ये जीवाश्म ईंधन या फिर परंपरागत जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इसी संकट को कहा जाता है विश्वव्यापी ऊर्जा संकट। हमारे पूरे विश्व में ये व्यापित है, मतलब कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, और इसी की वजह से सब लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं इतना ज़्यादा हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पूरे विश्व में एक ऐसी ऊर्जा की संकट आ सकती है जब हम लोगों के पास कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसका हम इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोत में कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी खनिज की चीज़ें हैं, जो भी हम लोग ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कम से कम इसको खर्च करना चाहिए और वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का सारा इस्तेमाल कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सभी के सभी दूसरा विकल्प, एक दूसरी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जो है गैर परंपरागत या फिर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। इसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सूर्य की जो रोशनी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा बनाने के लिए, उससे जो ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, पवन की गति के वजह से जो ऊर्जा पैदा होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जल की गति की वजह से जो ऊर्जा पैदा होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैव मात्रा में जो ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, परमाणु भट्टी से जो ऊर्जा पैदा होती है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। महासागर और भूगर्भ से धरती के अंदर से जो ऊर्जा निकाली जाती है इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इन सभी के सभी ऊर्जा के स्रोतों को गैर परंपरागत या फिर वैकल्पिक ऊर्जा कहा जा रहा है। इसको हम लोग एक अलग विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको वैकल्पिक ऊर्जा कहा जाता है। और एक खास बात इसकी ये होती है कि इसको हम दोबारा इसका नवीनीकरण कर सकते हैं, मतलब अगर ये खत्म हो जाएगा तो हम इसको दोबारा पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये कितनी ज्यादा फायदे की चीज है। परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के तो वो दोबारा नहीं मिल सकते, लेकिन जो ये गैर परंपरागत या फिर जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं ये हम दोबारा पैदा कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा ही फायदे की चीज है क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। अब इनका हम इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं, आप लोगों को पता है कि सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की गर्माहट की वजह से बहुत ज़्यादा सौर्य ऊर्जा पैदा होती है, तो इस सौर्य ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं हम उससे बिजली बनाने में, उससे विद्युत बनाने में। आप लोगों को पता है कि आजकल सोलर सेल लोग अपनी छतों पर लगाते हैं, उसकी वजह से वो सूरज की रोशनी को उसमें ले लेते हैं, सौर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करके उससे विद्युत बनाया जा सकता है। पानी गर्म करने के लिए सूरज की रोशनी से हम पानी भी गर्म कर सकते हैं, तो इस रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी सूरज की रोशनी है, बहुत कड़ी रोशनी है, तो उस वक्त हम उससे खाना भी बना सकते हैं। और भी अलग अलग कई तरीके के औजार उपकरण मौजूद हैं बाजार में जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए हमें उत्साहित कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पवन ऊर्जा के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब पवन में जो हवा होती है उसमें बहुत ज़्यादा गति होती है तो उसकी वजह से पवन चक्की चलने लगती है, तो जब पवन चक्की चलने लगती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। उसमें कुछ जनरेटर लगा होता है जिसकी वजह से जो पवन गति वाली पवन जो होती है उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, और उसी यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। उसके बाद अब बात करें अगर हम जैव मात्रा ऊर्जा के बारे में, तो ये क्या होता है, आप लोगों ने गोबर गैस के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, तो जो गोबर आदि गोबर का इस्तेमाल करके या फिर अलग अलग जो जैविक चीज़ें हैं जैसे फलों के छिलके या फिर जो पत्तियां होती हैं सूखी पत्तियां या फिर ऐसी चीज़ें जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं उस सबको मिला लिया जाता है, और उसके बाद कुछ गोबर भी उसमें मिला दिया जाता है, तो उसके बाद उसमें कुछ रासायनिक क्रिया होने लगती है, उसकी वजह से उसमें एक गैस प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, जिसे गोबर गैस कहा जाता है। और इस गोबर गैस का भी अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर खाना बना सकते हैं या फिर इससे बिजली भी बनाई जा सकती है, और इस ऊर्जा को कहा जाता है जैव मात्रा ऊर्जा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि नदियों से जो पवन जो जल होती है उससे हम कैसे ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जब बांध में जब पानी होता है नदी का बहुत ऊंचाई से गिरता है बांध की वजह से, तो क्या होता है वो टरबाइन से टकराता है और उसकी वजह से टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन से जुड़ा हुआ होता है जनरेटर, और जैसे ही टरबाइन गोल गोल जोर जोर से घूमने लगता है तो जनरेटर क्या होता है वो उसको उसकी गतिज ऊर्जा को उसकी यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, और उससे बिजली पैदा की जा सकती है जिसको हम अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी व्यवस्था को कहा जाता है विद्युत संयंत्र, मतलब कि यहाँ पर आप जनरेटर का इस्तेमाल करके टरबाइन के जरिए आप लोग जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे विद्युत संयंत्र कहा जाता है। और जो बांध से ऊर्जा हम पैदा करते हैं उसको गांव के इलाकों में या फिर दूर दूर जो अलग अलग उसके आसपास इलाके हैं वहां पर सभी के सभी जगहों पर उनको बिजली पहुंचाने के लिए इस बिजली का इस्तेमाल किया जाता है जो हम लोग बांध से पैदा करते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें परमाणु या फिर नाभिकीय भट्टी के बारे में, तो आप लोगों ने पढ़ा था अभी कि परमाणु या फिर नाभिकीय भट्टी में क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में, और फिर इस विद्युत का इस बिजली का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चीज़ों में, तो इस प्रकार का जो संयंत्र होता है उसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली पैदा की जाती है, और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके पनडुब्बी भी चलाई जा सकती है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी कभी महासागरों में क्या होता है ज्वार भाटा यानी कि ज्वालामुखी फट जाती है, कभी कभी उनमें तेज लहरें बहने लगती हैं, कभी कभी उनकी बहुत तेज धारा हो जाती है, तो उसकी वजह से उनमें कुछ ऊर्जा पैदा होती है, तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया जाता है और उसको विद्युत में बदल दिया जाता है, बिजली में बदल दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है महासागरीय ऊर्जा, क्योंकि ये हमें महासागरों से मिल रहा है इसलिए इसे महासागरीय ऊर्जा कहा जाता है। और कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपको पता नहीं भी होगा, तो कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी में, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के भीतर जो पृथ्वी का अंदर वाला हिस्सा है, उसमें जब भी कभी ताप में वृद्धि हो जाती है तो वहाँ वॉल्केनो फटने वाला होता है। तो जब कभी पृथ्वी में ताप में उनकी वृद्धि हो जाती है तो उस ताप की वृद्धि की वजह से उसमें कुछ तापीय ऊर्जा पैदा हो जाती है। उस तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत में उसको बदलने के लिए, और उससे विद्युत पैदा की जाती है, और इस ऊर्जा को कहा जाता है भूगर्भीय ऊर्जा, क्योंकि ये भू के गर्भ से हमें मिला है, धरती के अंदर से हमें मिला है, इसीलिए उसे भूगर्भीय ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र 9.6 में पेज नंबर 105 में आपको पवन चक्की बताई गई है किस तरीके की दिखती है, और सौर ऊर्जा संयंत्र किस तरीके का दिखता है वो भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक गतिविधि भी करनी है, गतिविधि 6 में आपको क्या करना है, आपके राजस्थान में जहाँ जहाँ पर आपके परमाणु ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा संयंत्र हैं, या फिर जहाँ जहाँ पर आपके राजस्थान में जल या ताप की विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, तो उसके बारे में आपको पता लगाना है, और राजस्थान के मानचित्र पर मतलब मैप पर आपको उसको लोकेट करना है, आपको पॉइंट लगाकर बताना है कि वो जगह कहाँ पर है राजस्थान में, और आपको खुद भी ये पता लगा करके रखना है ताकि आपकी भी कुछ जनरल नॉलेज बढ़े। तो एक तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिसमें यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, ये माही बजाज सागर बांध इसको कहा जाता है, और ये कहाँ पर है, ये बंसवारा टाउन में है, बंसवारा डिस्ट्रिक्ट पे है राजस्थान में। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसमें क्या किया जाता है, इसमें बिजली पैदा की जाती है इस बांध के जरिए। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग बांधों के बारे में बताना है और कहाँ कहाँ पर क्या किया जाता है, जल का इस्तेमाल करके विद्युत पैदा किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है, और आपके जो मैप होगा उस पर आपको बताना है अंकित करके कि कहाँ पर ये जगह मौजूद है। तो बच्चों आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर लें परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का, तो क्या होगा कि सारी की सारी जो हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा संकट हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको विश्वव्यापी ऊर्जा संकट कहा जाता है, और इससे बचने के लिए फिर हमें कुछ अलग अलग उपाय सोचने होंगे, जैसे कि हमको ऊर्जा के जो अलग अलग स्रोत हैं उनको हमें बहुत सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऊर्जा संरक्षण के अलग अलग उपाय बताए गए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो और ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हो, बचा सकते हो। तो सबसे पहला है कि आवश्यकता होने पर ही आप अपने घर में बिजली के साधनों का इस्तेमाल करें, और जब भी कभी आप कमरे में ना हो तो आपको बल्ब बंद कर देना चाहिए, और जो भी अलग अलग विद्युत के उपकरण हैं पंखे आदि उन सभी को भी आपको बंद कर देना चाहिए। दूसरा है कि खाना पकाने के लिए आपको सौर कुकर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके खाना पका सकते हो, उन्नत चूल्हों का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप खाना बनाओ तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो खाना के पात्र होते हैं, बर्तन जो होते हैं, उनको ढक कर ही खाना आपको पकाना चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग कोई भी ईंधन बर्बाद ना करें। उसके बाद तीसरा है कि किसी स्थान पर रुकने या फिर किसी की प्रतीक्षा अगर आप कर रहे हों तो उस वक्त आपको अपने गाड़ी जो है उसकी इंजन को आपको बंद कर देना चाहिए, ताकि जो पेट्रोल या डीजल है वो व्यर्थ ना जले, और उससे आप बचा सको अपनी गाड़ियों को, ईंधन को आप व्यर्थ ना करो। और साथ में आप ये भी कर सकते हो कि आपको अपने वाहनों की हमेशा समय समय पर जाँच करवानी चाहिए, सर्विसिंग करवानी चाहिए, ताकि उसमें फालतू में कोई ईंधन व्यर्थ ना हो। और साथ में जो गाड़ी के टायर होते हैं उसमें आपको हमेशा पर्याप्त हवा भर के रखनी चाहिए। उसके बाद चौथा है कि सौर ऊर्जा का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, और परंपरागत ईंधन के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जो और भी अलग अलग ऊर्जा के स्रोत हैं उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो परंपरागत ईंधन है उनका इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए। उसके बाद पांचवा है कि जैव अपशिष्ट पदार्थों व गोबर से बायोगैस बनाकर काम में आपको लेना चाहिए, ताकि आप परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण कर सकें। उसके बाद छठा है कि अगर हम कभी भवन का निर्माण कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो उस वक्त हमें घर को इस तकनीक से बनवाना चाहिए कि वो सर्दियों के वक्त में हमारा कमरा गर्म रहे और गर्मियों के वक्त में हमारा कमरा ठंडा रहे, ताकि हम लोगों को एसी या फिर हीटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना ना पड़े। उसके बाद सातवां है कि दैनिक जीवन में जो उपयोग करने वाली वस्तु हैं उसमें ज़्यादातर वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें आप लोग बिजली का इस्तेमाल करते हो, इसलिए जब भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करो तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप कभी भी बिजली वेस्ट ना करो, जब ज़रूरत हो तभी उसका इस्तेमाल करो। उसके बाद आठवां है कि आपके घरों में जितने भी बल्ब लगे हैं, चाहे ट्यूबलाइट लगी हैं, तो इनमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि बल्ब की जगह पर आपको एलईडी की लाइट्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बिजली की बचत बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों, ये तो हमने बात कर ली अपने अध्याय की, अब हम कुछ अभ्यास कार्य के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें आपको सही विकल्प को चयन करना है। पहला है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो आपने पढ़ा था कार्य का मात्रक होता है जूल, तो आप जूल को टिक कर देना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो हमने पढ़ा था कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि जो लकड़ी होता है उसे लकाष्ट ईंधन कहा जाता है, तो वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता, तो आप यहां पर लकड़ी को टिक कर देना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मतलब कि आपको बताना है कि किस ऐसे चीज में आप लोग बिजली का इस्तेमाल करके उसमें आवाज उसमें उत्पन्न करते हो। तो आप लोगों को पता है कि विद्युत घंटी में बिजली का इस्तेमाल करके उसमें घंटी में आवाज पैदा की जाती है, तो विद्युत घंटी को आप टिक कर देना। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें से पहला प्रश्न है, वस्तुओं में गति के कारण ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुलेल में रबड़ खींचने से उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि गुलेल के रबड़ को खींचने से उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि घरों में प्रयुक्त होने वाला विद्युत सेल कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो आपको पता है ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, इसमें से आपको इनको मिलाना है। पहले कॉलम में पहला पार्ट है, उसमें बोला गया है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में उसको बदला जाता है, कोई ऐसा उपकरण आपको बताना है। तो आप लोगों को पता है स्पीकर में क्या किया जाता है, स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। तो आप फर्स्ट वाले को द से मिला देना। उसके बाद अगला है विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, कोई ऐसी चीज आपको बतानी है जिसमें विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में उसको बदला जाता है। तो आप लोगों को पता है हीटर में, विद्युत हीटर में क्या करते हैं कि बिजली का इस्तेमाल करके उससे गर्माहट पैदा करते हैं, तो आप विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा को मिला देना स से विद्युत हीटर से। उसके बाद अगला है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में किसी चीज को बदला जाए, वो कौन सा ऐसा उपकरण है। तो आपको पता है जनरेटर में जो जनित्र होता है या फिर डायनामो, इसमें क्या करते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद अगला है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन सी चीज को इस्तेमाल करके बदला जाता है, तो सोलार सेल को इस्तेमाल करके प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर लघु उत्तरात्मक प्रश्न, इसमें से पहला प्रश्न है कार्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी वस्तु पर अगर कुछ बल लगाया जाए और उस बल लगाने की दिशा में ही उसमें कुछ विस्थापन हो जाए, तो उसी को कहा जाता है कि उस पर कुछ कार्य हुआ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कार्य बराबर होता है बल लगाने के गुणा उसके जिस दिशा में बल लगाया गया है उसी दिशा में उसका कितना विस्थापन हुआ है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वस्तु पर किया गया कार्य किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात तो ये कि उस पर कितना बल लगाया गया है। अगर किसी वस्तु पर ज़्यादा बल लगाया गया है तो कहा जाएगा कि उस पर ज़्यादा कार्य किया गया है। उसके बाद दूसरी बात होती है कि उसका विस्थापन कितना हुआ है। जिस वस्तु का जितना ज़्यादा विस्थापन हुआ होगा कहा जाएगा कि उस पर उतना ही ज़्यादा कार्य हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के ऊपर निर्भर करता है और उसके विस्थापन पर भी निर्भर करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अपने दैनिक जीवन में प्रेक्षण के आधार पर दो दो ऐसी वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जिनमें स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा होती है। तो आप लोगों को पता है कि अगर मान लो आप किसी बॉल से खेल रहे हो और उस बॉल को आप गति दे दोगे तो उसकी वजह से उसमें कुछ गतिज ऊर्जा आ जाएगी। या फिर आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां देखी होंगी, तो गाड़ियां जो चल रही होती हैं जिनमें गति होती है तो उसकी वजह से उनमें भी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा के भी अलग अलग उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे गुलेल का इस्तेमाल अगर किया जाए, हम गुलेल में अगर रबड़ को खींचें तो उसकी वजह से उसमें उसको रबड़ को खींचने की वजह से उसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा पैदा हो जाती है। या फिर जो हम लोग घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, तो आप लोग जब भी इस घड़ी की स्प्रिंग को ऐंठ देते हो तो क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर ये दो दो उदाहरण आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ऊर्जा रूपांतरण किसे कहते हैं, ऊर्जा रूपांतरण के 3 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है कि जब भी हम एक ऊर्जा के रूप को दूसरे ऊर्जा के रूप में बदल दें उसी को ऊर्जा रूपांतरण कहा जाता है। मैंने आपको बताया है कि ऊर्जा न पैदा की जा सकती है, ना उसको खत्म किया जा सकता है, ना वो नष्ट हो सकती है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। अलग अलग प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उनको हम अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं में बदल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि जो घंटी होती है, विद्युत घंटी जो होती है आपके स्कूल में लगी हुई होगी, उसमें क्या होता है, उसमें इस्तेमाल तो विद्युत ऊर्जा का होता है, उसमें बिजली भेजी जाती है, लेकिन उस बिजली का इस्तेमाल करके उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, वो बजने लगती है विद्युत घंटी। तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि वहां पर विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसको ध्वनि ऊर्जा में बदला जा रहा है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो विद्युत हीटर होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें बिजली का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके उसको ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब विद्युत हीटर में भी विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसको ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा सोलार सेल में क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है सूरज की उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहाँ पर आप इन्हीं तीनों चीजों का उदाहरण लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें से पहला प्रश्न है कि विश्वव्यापी ऊर्जा संकट क्या है और विश्वव्यापी ऊर्जा संकट से बचने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, वर्णन कीजिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे आसपास जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे कि जो ईंधन है जिसमें आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो या फिर डीजल का इस्तेमाल करते हो या फिर जो रसोई गैस होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये सभी के सभी जो ईंधन है, या फिर जो लकड़ी है, ये सभी के सभी ईंधन क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम है हमारी धरती पर। और बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से इन सभी ईंधनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनका इस्तेमाल हो रहा है और कम होते जा रहे हैं, तो ऐसी संकट की घड़ी आने की आशंका है जब क्या होगा कि सारे के सारे ईंधन खत्म हो चुके होंगे और इनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसी संकट की घड़ी को कहा जाता है विश्वव्यापी ऊर्जा संकट। और इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम जब भी कभी जो विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करें, अपने घर में बिजली का इस्तेमाल करें, तो वो तभी इस्तेमाल करें जब हमें उसकी आवश्यकता हो। अगर हम कमरे में ना मौजूद हो तो हमें बिजली के सारे उपकरण बंद कर देने चाहिए। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम सौर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके खाना बना सकते हैं, प्रेशर कुकर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी हम खाना बनाएं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ढक्कन हमें लगा कर ही खाना बनाना चाहिए ताकि हम ईंधन व्यर्थ ना करें। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी गाड़ी कहीं पर रुकी हुई है ट्रैफिक में तो उस वक्त हमें इंजन जो होता है गाड़ी का उसको बंद कर देना चाहिए ताकि हमारे जो पेट्रोल या डीजल है वो फालतू में ना जले। उसके साथ में हमें क्या करना चाहिए, गाड़ियों की हमें रेगुलर सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए और उसके टायर में हमें पर्याप्त हवा भी भर के रखनी चाहिए। उसके बाद हम सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा अगर इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि जो परंपरागत ईंधन है वो बच सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें जैव अपशिष्ट पदार्थों का या फिर जो गोबर गैस है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जो परंपरागत ईंधन है उसका ज्यादा से ज्यादा बचाव कर पाए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि भवन का हमें ऐसे निर्माण कराना चाहिए, बिल्डिंग ऐसे बनवानी चाहिए ताकि वो सर्दियों के वक्त में गर्म रहे और गर्मियों के वक्त में ठंडी रहे, ताकि हम लोग एसी या हीटर का ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत ना समझ पाए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, जैसे जो बल्ब हो गया, चाहे जो पंखा हो गया, चाहे जो एसी हो गई, जब हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए कि जरूरत हो तभी इस्तेमाल करें, जरूरत ना हो तो हमें इसे बंद कर देना चाहिए। या फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारे घर में जो बल्ब लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, वहां पर हमें LED बल्बों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे बिजली जो होती है ज्यादा खर्च नहीं होती। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों के उदाहरण की सहायता से उनको स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो हम बहुत समय से इस्तेमाल करते आए हैं और आज भी हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनमें आते हैं जीवाश्म ईंधन और काष्ठ ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी के सभी चीज़ें जीवाश्म ईंधन होती हैं। और काष्ठ ईंधन क्या होता है, लकड़ी होता है। और इन सभी के सभी चीज़ों को हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कैसे बना था आप लोगों को पता है कि बहुत समय पहले हमारे जो धरती पर पेड़ पौधे थे, जीव जंतु जो थे, हमारी धरती के अंदर कुछ हलचल हुई जिसकी वजह से ये सभी के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे धरती के अंदर दब गए। और उसकी वजह से जैसे कि उसकी वजह से क्या हुआ, धरती के अंदर जैसे ये दबते चले गए तो दाब और ताप दोनों बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से ये जो जीव जंतु और पेड़ पौधे थे ये बदल गए ईंधन के रूप में, ये खनिज के रूप में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए, कोयले में बदल गए। और इन्हीं सभी चीजों को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। और अगर हम इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कहा जाता है कि ये बहुत लिमिटेड होते हैं, हमारे धरती में बहुत कम मौजूद हैं, तो इनका अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो एक समय के बाद ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम परंपरागत स्रोत के ईंधनों का इस्तेमाल करें, और ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गैर परंपरागत या फिर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करें। ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो हमें सौर्य ऊर्जा से जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सौर्य ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है सोलर सेल बनाने में, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम बिजली बना सकते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें जो होती हैं, पवन की गति का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, पवन चक्की के द्वारा हम विद्युत बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो बांध होती है उसमें जो टरबाइन होता है उसके चलने की वजह से हम जनरेटर का इस्तेमाल करके उससे भी बिजली बना सकते हैं। तो इन सभी की सभी चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि हमें परंपरागत स्रोतों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और गैर परंपरागत चीज़ों का इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा ये है कि ये दोबारा बनाई जा सकती हैं, इनका नवीनीकरण किया जा सकता है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। और इनमें और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि जैव मात्रा ऊर्जा, इसमें आता है बायोगैस। बायोगैस में क्या करते हैं, जो गोबर गैस होता है उसका, गोबर जो गाय का होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और पेड़ पौधों के जितने भी कचरे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और इन सभी के सभी को मिला करके इसमें से एक गैस उत्पन्न होती है जिसे गोबर गैस कहा जाता है, जिसको हम खाना पकाने के लिए या फिर इससे बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी। इसमें क्या करते हैं, जो परमाणु ऊर्जा होती है उसको बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में, और इसी को कहा जाता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है ये। साथ में कभी कभी महासागर में जो ज्वारभाटा आ जाता है, तेज लहरें आ जाती हैं, जो बहुत तेज धाराएं जो बहती हैं कभी कभी महासागर में, तो उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उसे महासागरीय ऊर्जा कहा जाता है, और ये महासागरीय ऊर्जा भी एक तरीके का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। साथ में भूगर्भीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। भूगर्भीय ऊर्जा में क्या होता है कि जब भी कभी धरती के भीतर के हिस्से का ताप बढ़ जाता है तो इस तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए, तो इसको कहा जाता है भूगर्भीय ऊर्जा। साथ में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या चित्र 9.5 बना सकते हो। इसमें एक चार्ट दिया गया है पेज नंबर 104 में, इसमें बताया गया है कि ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जीवाश्म ईंधन आते हैं और काष्ठ ईंधन आते हैं। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं, पेट्रोल डीजल प्राकृतिक गैस और कोयला, काष्ठ ईंधन माने की लकड़ी। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, और जैव ऊर्जा को गोबर गैस कहा जाता है। तो इस चार्ट को भी आप बना सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आपका अध्याय खत्म हो गया। आपको क्या करना है, आपको पूरे के पूरे अध्याय को फिर से एक बार खुद पढ़ना है, कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।